वो चीज़ें जिनको हमने बिल्कुल कंडम और आउट ऑफ आउटडेट किस्म की एक्सपायर चीज़ समझ के अपने घरों में मुरव्वतन ही रखा हुआ है, या अखलाकन रखा हुआ है, या मजहबन रखा हुआ है, ये सिर्फ रखी जाने वाली चीज़ें नहीं है, बल्कि वह बिल वालिदैनी एहसाना, उनको फील ही ना होने दें कि आप बेकार हैं। हम ज़रा उनको हंसता बोलता देखें, अच्छा पहनता ओढ़ता देखें, तो हम कहते हैं अब ये बुड्ढों को क्या सूझा, ये अम्मा हर चीज़ में बड़ी दखल देती हैं, इनको ज़रूर शादी में जाना है, इनको ज़रूर दावत में आना है, अब इनकी कौन उंगली पकड़ पकड़ के इनको ले जाए। दिल तो बूढ़ा नहीं हुआ, दिल तो वही है। इसलिए हर उम्र के अंदर माँ बाप के साथ एहसान की सूरत बिल्कुल फ़र्क होगी। आप चेक कीजिए, माँ बाप जब जवान है तो आपको तो अभी इतनी समझ ही नहीं होगी, मतलब आप में से मिसाल है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं, अब उनके पेरेंट्स या मदर्स फादर्स यंग हैं, तो वो यंग हैं तो इस उम्र में इतना एहसास नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ वो कमज़ोर होंगे। शुरू में आप देखिए कि बच्चा माँ बाप का डिपेंडेंट होता है, लेकिन जब उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, खुद मुख्तार होता है, तो फिर वही माँ बाप उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। और ये भी देखा गया कि एक माँ और बाप 6-7 बच्चों को एक कमरे 2 कमरे के घर में पाल लेते हैं, और वो 6-7 बच्चे एक बूढ़ी माँ या एक बूढ़े बाप को नहीं पाल सकते, फिर बारियाँ लग जाती हैं, तुम किसको रखोगे, मैं किसको रखूँ, मेरी बारी है, उसकी बारी है। किसी ने कहा हमने अपने बूढ़ों की बारियाँ लगाई हुई हैं, क्या एक बहू के पास ससुर रहते हैं 1 महीना कुछ, तो सास दूसरी जगह रहती हैं, फिर वो मतलब उलट पुलट करते हैं, तो मैंने कहा आपने उनको ज़िंदगी में जुदा कर दिया, इस उम्र में तो इंसान 100 दुख सुख करता है। कहा नहीं, 2 बूढ़ों का बोझ नहीं एक बच्चे से संभाला जाता। किसी ने कहा कि हमारी सास आई हुई है, आजकल मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ, आजकल बड़ी परेशान हूँ, क्या वो जी मेरी सास आई हुई है तो क्या हुआ, नहीं वो 3 माह हमारे घर रहेंगी, फिर 3 माह के बाद देवर के घर चली जाएंगी, फिर 3 माह के वो जाएंगी, तो मेरे लिए ये दिन बड़े कठिन है। और बूढ़ी बीमार सास बिस्तर पे, और उनके साथ पूरी मेड और डॉक्टर सब उनके साथ हैं, जो करते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक जहन में है ना कि नहीं ये बिस्तर पे पड़ी हुई भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ये ना कीजिए। सिर्फ एक दफ़ा अपने दिल से हम इन कमज़ोर चेहरों हड्डियों हड्डियों की मुट्ठी बन जाते हैं बूढ़े, कितनी झुर्रियाँ होती हैं उनकी, एक एक झुर्री के अंदर कई तजुर्बात हैं, उनके अंदर अक्ल उतनी है आज भी। कभी आप बूढ़ों की अक्ल को देखें, उनकी बातें देखें, आप कहते हैं अम्मा को कितना ख्याल है। ज़रा घर में कोई आके बैठे आप देखें, बूढ़ियों को फिक्र लग जाती है, इशारों में कहेंगी खाना लाओ, चाय लाओ, इसको तोहफा देना, इसको यहाँ बिठाना, पूरी फिक्र, और आप कहते हैं अम्मा मुझे सब पता है, चीख के ना कहिए, कदर कीजिए, क्योंकि ये अम्मा हमेशा नहीं रहेंगी आपके पास। अल्लाह ताला कहते हैं हमलत हु मुहु कुरहम वदात हु कुरहा, इसलिए करो कि इसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा, और मुशक्क़त उठाकर ही इसको जना, और साथ ही साथ वह हमलुहू व फिसालुहू 30 शहरा, इसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यहाँ ख़ास तौर पर माँ का तस्करा है, क्योंकि माँ की तकलीफ़ बाप की तकलीफ़ से ज़्यादा होती है, बाप माली एतबार से ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन अखलाकी और तरबियती मराहल माँ सर अंजाम देती है। यहाँ 3 तकलीफ़ों का तस्कर है, पहले माँ के पेट में रहना, फिर डिलीवरी, वज़ाए हमल, और उसके बाद दूध पिलाना, ये 3 तकलीफ़ें हैं। इसीलिए फरमाया कि माँ का हक़ ज़्यादा है। इसको एक बड़े खूबसूरत तरीके से एक नशीत में भी कहा गया, अगर हो सका प्ले तो मैं आपको सुनवा देती हूँ, कि किस तरीके से माँ बच्चे के लिए मुश्किलात, माँ बाप के हकूक ना दिए हों तो उनके दुनिया से जाने के बाद गम तो आता ही है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों पे नज़र डालें तो कुरान से जुड़ने के बाद एक ये भी हमें गिल्ट शुरू हो जाता है कि हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। ये साथ साथ चलते हैं रिश्ते, एक तरफ बूढ़ी सास या माँ दादी और दादा की सूरत में बैठे हैं आपके घर में, तो एक तरफ आपकी नज़रों में मासूम बच्चे भी हैं, दोनों के साथ आपका मामला कैसा होना चाहिए, एहसान का होना चाहिए। वरना याद रखिए कि जब हम लोगों को उनके हक नहीं देते, कोई और हमसे आके वही हक ले जाएगा। बस अगर हम किसी की कोई चीज़ छीन के ले आते हैं ना, तो वही चीज़ को हमसे भी छीन के ले जाएगा। आज आप माँ बाप के साथ अच्छा मामला नहीं कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि कल हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। इस पे कई कहानियाँ सुनी और सुनाई हुई हैं, और आप, मैंने पिछले कई लेक्चर्स में इस पे बात भी की हुई है कि किस तरह बूढ़े बाप को जंगल में छोड़ने के लिए जब बेटा गया तो बहू बर्दाश्त नहीं कर सकती बूढ़े ससुर को, तो वो बूढ़ा बाबा था वो उसको कहने लगा, बेटा मुझे इस दरख्त में नहीं वहां छोड़ो, काबा और सैर करके आते हैं, और साथ उसका कोई बोरिया उठा लिया, बिस्तर उठा लिया। जब उसको एक जगह छोड़ने लगा तो कहा कि नहीं बेटा मुझे इधर नहीं, वो परे एक दरख्त है उसके नीचे बिठाना। कहा अब्बा वो क्यों? कहा कि मैंने भी आज से कई साल पहले अपने बाप को वहीं बिठाया था। जी, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि वो गुनाह जिसके लिए अल्लाह ताला आखरत का इंतज़ार नहीं करता कि बंदे को पकड़े, दुनिया में सजा देता है, उसमें एक उकूकुल वालिदैन भी है, माँ बाप की नाफरमानी। जैसे लफ्ज़ हकूक है ना, उसे अकूक आइन से कह ले, टिट फॉर टैट जो आज करते हैं वो कल मिलता है, इसलिए इस मामले में इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। माँ के हक पूरे करने हैं तो बाप के भी करने हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनके हकूक में टकराव पैदा होने लगता है हमारे बच्चों के मामलात में, क्योंकि कैसे लेके चले इन रिश्तों को, ये प्यार के मामलात हैं, तो उसका किससे पूछे। एक शख्स थे, उन्होंने किसी से पूछा कि मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, आमदन इतनी थोड़ी है कि बीवी बच्चों को खिलाकर इतना नहीं बचता कि बूढ़े माँ बाप को भी कुछ दे सकूँ, तो मेरे लिए एक रुख्सत है। तो उस आलिम दीन ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर आपका सवाल ये होता कि मेरी आमदन बहुत थोड़ी है, माँ बाप के खराजात पूरे करने के बाद इतना नहीं बचता कि बीवी बच्चों को दे सकूँ, तो मैं क्या करूँ। सोच का फ़र्क देखिए। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि 30 महीने तक तुम्हारी माँओं ने तकलीफ़ सही है। 30 महीने क्यों कहे गए, इस पे एक फिकी बात है जिसका हमारे इस वक्त मौजू से तो ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बहरहाल इस पे बात बहुत होती है। आप देखिए कि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। कुरान पाक में सूरह बकरा में आता है कि वल वालिदात युर्देना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, 2 पूरे साल दूध पिलाएं जो रजात को पूरा करना चाहते हैं। अब 2 साल के अंदर आप जब 30 को करते हैं तो 2 साल हो गए 24 महीने के, 24 पे ऊपर 6 महीने सिर्फ रह गए। यहाँ अल्लाह ताला ने 30 माह की बात की, तो इस आयत से एक साइड इशू मिलता है कि 6 माह का हमल भी माना जाएगा। एक शख्स था, उसकी शादी हुई, 6 माह के बाद बच्ची बीवी ने बच्चा जन्म दिया। वो अल्लाह के नबी के पास आगे कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लम, ये बच्चा मेरा नहीं है, इतनी जल्दी कैसे पैदा हो गया? तो आपने जब पता किया 6 माह था तो आपने कहा क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ी? तो 6 माह का बच्चा भी रह सकता है। और आज भी आप जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बाज़ दफ़ा 6 माह के बाद के बच्चे फिर इंक्यूबेटर्स में रखे जाते हैं। तो बहरहाल ये कि ये मुशक्क़तें बयान की, अब आगे देखिए कि बच्चा जवान होता है। हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहू व बलगा 40 सना, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुँचा और 40 साल का हो गया। बीच के सारे स्किप कर दिए अल्लाह ताला ने। इस आयत की यही खूबी है, एकदम औलाद को जवान होते दिखाया जाता है कि माँ ने मुशक्क़त सही सहा सब कुछ किया, अब वो बच्चा 40 साल का हो गया। अब इस 40 साल की उम्र का होने के बाद इस बच्चे की ज़ुबान पे क्या बात थी? قال ربي أوزعني أن أشكر النعمة التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين। तो जब बच्चा 40 साल का हुआ तो उसकी ज़ुबान पे दुआ ये थी कि रब मुझे तौफीक दे। औज़ेनी का लफ्ज़ है, लफ्ज़ी औज़ानी का मैनी में होता है बांध ले, अल्लाह मुझे बांध ले, यानी मुझसे पकड़ कर ये नेकी करवा। क्या क्या नशकुरा नेमत कल्लती, मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की, यानी जो तूने मुझे नेमतें दी, जो मेरे माँ बाप को दी, जो सबको दी, ये इन सारी नेमतों पे मैं तेरा शुक्र अदा करूं। और साथ ही साथ वान आमला सालेहन तरदाहू, मैं ऐसे अच्छे काम करूं जिसे तू भी पसंद करे। बड़ी काबिल गौर बात है, सिर्फ अच्छा अमल कर लेना कोई बात नहीं होती, अच्छा अमल जिसको अल्लाह ताला भी पसंद करे, ऐसा खूबसूरत अमल कि जो तुझे भी प्यारा लगे, जिसको तू पसंद करे, और साथ ही साथ वस लिख ली फी जुर्रियती। इस दुआ की खूबी देखिए, एक ही दुआ में माँ बाप और औलाद दोनों के लिए दुआ आ गई है कि आप मेरी औलाद की भी इसलाह फरमा। 40 साल की उम्र का होने तक अमूमन अपनी औलाद हो ही चुकी होती है, और बाज़ दफ़ा अब उनकी फ़िक्र भी लग चुकी होती है कि ये बिगड़ ना जाएं और इनके अंदर कोई ख़राबियाँ ना आ जाएं। तो कहा कि मुझे नेक आमाल की तौफीक दे और मेरी औलाद की इसलाह कर, और इन्नी तुबतु इलैक, पिछली ज़िंदगी में कोई गुनाह कर करा लिए तो अब मैं उनसे तेरी तरफ पलटता हूँ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। मुफस्सरीन कहते हैं कि वैसे तो माँ ये दुआ वैसे पढ़नी ही चाहिए, लेकिन 40 साल का जब इंसान हो जाए या होने लगे तो उसको कसरत से ये दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें अरबईन का लफ्ज़ आया है। अल्लाह ताला ऐसी दुआ मांगने वाली नेक औलाद की बात करते हुए कहते हैं, उलाइकल्लज़ीना नतकब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू, ये वो लोग हैं कि हम उनके आमाल की बेहतरीन चीज़ों को कबूल करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है, ये कुरान में और भी कई जगह आती है। ये नहीं कहा कि हम उनके आमाल कबूल कर लेते हैं, यहाँ के अहसना मा अमिलू। इस आयत को जब हम सुनते हैं और इस बात की समझ आती है तो यकीनन दिल अल्लाह के आगे झुक जाता है कि अल्लाह ताला उनके आमाल के अहसन हिस्से को कैसे कबूल करते हैं। छोटी सी मिसाल से बात समझाना चाहूँगी। हम सब नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, क्या हमारी हर नमाज एक ही तरह की होती है? ऐसा नहीं होता। हमारी कोई नमाज तो ऐसी होती है कि ऐसे लगता है कि सीधी आसमान पे चली गई, और कुछ ऐसी भी होती हैं सिर्फ हमने एक फ़र्ज़ पूरा किया होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ये दुआएं मांगेंगे ना, मैं उनकी नमाजों में से जितनी भी नमाजें थी उनको उसकी वो आसन दर्जे की नमाज के लेवल पे ले जाके कबूल करूँगा। बात
कौन
वाज़े
सी दुआ है? यही वाली?
जी, यही पे है। यानी सारी नमाजों को उस एक नमाज के लेवल पे कर दूंगा जो कभी उसने बड़े दिल से पढ़ी थी, सारे रोज़ों को आसन पे ले जाऊंगा, है ना, लकी शान। और दूसरा काम, वन तजावज वन सही ही आती हिम, मैं उनकी बुराइयों से दरगुजर करूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गुनाह, मैं माफ़ कर दूंगा, तुमने गुनाह किए कर लिए लेकिन मैं तुम्हारे उन गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और फरमाया ये लोग जन्नतियों में से होंगे। दुआ से क्या बिगड़ता है, कभी सोचे? दुआ तो एक सबसे आसान इबादत है जिसमें बंदा सरासर अपने लिए मांग रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि इंसान बाज़ दफ़ा फारिग बैठा रहता है, कोई दुआ नहीं मांगता, और ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए दुआ। तो ये दुआएं इंसान की गुनाहों की बख्शिश का सबब बनती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वादा सिद्क की, ये सच्चा वादा है। कौन सा? अल्लज़ी कानू युआदून, जिसको जो कि उन्होंने उनसे किया गया। तो यहाँ तक एक किरदार पूरा हुआ, हम यहाँ तक बात कर लेते हैं, फिर अगला बड़ा ही तकलीफ़दह किस्म का किरदार है बिगड़ी हुई औलाद का, कि जो अपने माँ बाप की आंखों के आंसू बन गई। यहाँ तक जो औलाद है, पहले तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल कर ले, हम अपने माँ बाप के हकूक़ पूरे करें और फिर हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने। जितना आप देखेंगे कि जो इंसान अपने माँ बाप के साथ नेक होता है ना, करीम होता है, उनके आगे आजिज़ मिजाज होता है, उतना ही अल्लाह ताला उसको ज़्यादा नवाजते हैं। ये एक मुशाहदे की भी बात है। और हमारे तरबियत में जो दौर पीछे चलता था उसमें यही रंग नुमाया था, मोहब्बतों का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। अभी बच्चियाँ छोटी होती थी तो माएँ उनको अपने साथ लगा लेती थी, वो भी आटे गूंद रही हैं, वो भी रोटियां पका रही हैं, वो भी पास खड़ी होकर बर्तन धो रही हैं। इसी तरह वो बच्ची पता ही नहीं चलता था, और एक जवान बच्ची बनती थी और अपने घर जाने वाली होती थी, पूरा घर संभालती थी। मेरी आंखों में कई ऐसी बच्चियां हैं कि माँ बाप, माएँ बीमार हो गई और 8, 10, 9 साल की बच्चियों ने अब छोटे छोटे बहन भाइयों को देखना शुरू कर दिया। 10, 12 साल की बच्चियाँ हंडिया पकाती थी, सच बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा, आप में से भी कई ऐसे होंगे। 15, 16 साल की उम्र में लड़की को घरदारी ना आए, इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। चले आज से 20 साल पीछे ले जाएं, 25 साल ले जाएं, आज बुरा नहीं मानिएगा, आप में से कुछ यंग बच्चियां भी दिख रही हैं, 15, 16 साल की बच्ची 5 दालों के रंग नाम समेत बता सकती हैं, और बड़े लाड़ से पूछती हैं वो कौन सी दाल, वो पीली दाल, लाल दाल, खट्टी दाल, और इसको बड़ी अदा समझते हैं। हमने तो कभी काम नहीं किया, इसको अदा समझते हैं। सोचिए, मैं आपसे कहूँ मैं कभी कोई काम नहीं करती तो ये मेरा फोहड़पन है कि? और लड़कियां अल्लाह की पनाह जब काम करने किचन में चली जाती है तो माएँ कहती खुदा के लिए तुम छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूंगी। क्यों? कि तुमने जो भी फैला के जाना है, केक बनाना है, क्या करना है, तो बाद में मुझे शाम आधी रात हो जानी है जो किचन साफ करते हुए। क्या ये खूबी की बात है? आप सब बच्चियाँ चांद पे भी पहुंच जाएंगी ना लंदन की बजाय, अमेरिका में भी चली जाएं, ये औरतपन के खिलाफ है। औरत का सबसे बड़ा हुसन जो है ना उसका सलीका है। हमें अपने घर जब तक सही नहीं चलाने आएंगे ना, हम कभी आने वाली नस्लों की सही तरबियत नहीं कर सकेंगे। और वो बेचारे जो हमें ले के जाते हैं बड़े लाड और चाव और अरमानों से, हम उनकी आंखों की कभी ठंडक नहीं बनेगी। उस मर्द के हाल पे रहम करने की ज़रूरत नहीं कि जिसकी बीवी को खाना ही नहीं पकाना आता, जिसको संवारना नहीं आता। और इन बच्चियों का क्या कसूर? फ़र्क फिर देखिए, अब दोनों साइडों को हम डिफेंड कर लेते हैं ना, इस मामले में कसूर किसका है? क्या बच्चियों का कसूर है इसमें? माँ का है। और माँ क्या कहती है? इसके लिए तो पहले इतने काम है, इसने तो पढ़ना होता है। हमने बच्चियों को वो कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। कल के किसी लेक्चर में सवाल भी आया था आप लोगों में से कि फिर जो बच्चियाँ पढ़ती हैं इतना, तो फिर वो पढ़ाई के बाद क्या वो काम ना करें? तो ट्रेंड चेंज हो गए। अब देखिए, औरत के पढ़ने की कई ऐसी चीज़ें ना जो उसकी घरदारी में काम आती हैं, जो उसकी माँ बच्चों की परवरिश में काम आती हैं। मैं फिर यहाँ बात कहूँगी कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि लड़कियाँ पढ़ें, मैंने भी अल्लाह के हुक्म से पढ़ा है, तभी तो आपसे बात करने के काबिल हुई ना। मुझे बात ही ना करनी आती हो तो आप मेरी बात सुनेंगे कैसे? पढ़ाई के खिलाफ नहीं है इस्लाम, लेकिन आपको औरतपन नहीं जाना चाहिए। बच्ची बच्ची बन के रहे, सुघड़ बच्चियाँ, खूबसूरत तरीके से घर चलाने वाली। जब माँ बाप के घर से ये सब सीखती हैं ना, तो फिर उनको ससुराल में जाने का हौका नहीं होता। आज क्या बन गया हमारी तरबियत का नक्स कि पहले बच्चियों को बेड पे हम खाना देते हैं, फिर वो खाती कोई नहीं, फिर माएँ रोती हैं, फिर उनके नखरे देखती हैं। कपड़े तक तो बाज़ माएँ बच्चियों के धोती इस्त्री करती, उनकी अलमारियों में रखती हैं। उनको बस लिटरली ऐसी बच्चियाँ जिनको चूल्हा नहीं जलाना आता। आप में से भी तो नहीं कोई ऐसा? मैं यहाँ की तो जानती भी नहीं, इसीलिए तो मैं ये बात कर रही हूँ। यदि हम यहाँ और वहाँ की बात नहीं कर रहे, हम बिगाड़ की बात कर रहे हैं। तरबियत के अंदर बच्चियों की तरबियत जब हम करें, हम इन बच्चियों को नहीं सुना रहे, मैं तो इनकी माँ को सुना रही हूँ। बच्चियाँ खुश रहें, माएँ सही तरबियत नहीं करती। देखिए कि बेटियों की तरबियत में सब्र, बर्दाश्त, आजजी और इस तरीके का मिजाज होना चाहिए कि वो हर किस्म के हालात से गुजर जाए। मुझे किसी की कही हुई बात याद आ गई कि लड़की तो सुई की तरह होनी चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी मोटे में से भी गुजर जाए, पतले में से भी गुजर जाए। यानी सुई मोटे कपड़े से भी गुजरती, मतलब क्या था कि जिस तरह के हालात आ जाए उनकी ज़िंदगी में। आज लिटरली मैंने लड़कियों की ये बातें सुनी हुई हैं, वो कहती ने हमें, हम ससुराल के साथ नहीं रह सकते, हमें हमसे नहीं बर्दाश्त होता कि हमारे घर में कोई और हमारे सर पे हाकिम हो। आप देखिए कि हम जुल्म की हद तक तो बात नहीं करते, लेकिन हमारे कल्चर का ये हिस्सा रहे ही है कि लड़कियां आते ही ससुराल की खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, मोहब्बत लेना, और वो दिल में चली जाती थी। खिदमत थोड़ी कर देती थी, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी वो घर उनका, उनके गुण गाता है कि ये बहू ऐसी है, ये बच्ची ऐसी है। आज पहले से हमारे जहनों में एक तस्वर है, मैं और मेरा मियाँ, और मियाँ भी नहीं होता असल में, वो मंगेतर या उससे पीछे वाला ही दर्जा होता है, क्योंकि उसमें और मियाँ बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिस लड़के से मोहब्बत करके हम शादी करना चाह रहे होते हैं, अगर हम उसको शौहर के नाते से देखें, तो हो सकता है कि हमारी नज़र के आगे आई हुई कितनी धुंध छट जाए। तरबियत बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लड़कों की भी लड़कियों की भी। अच्छे तरीके से मामलात को साथ लेकर चला जाए, माँ बाप बच्चों को घरदारी सिखानी। अब देखिए कि ये जो हमारा ख़ानदानी सेटअप है ना, इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी इसलाह की भी ज़रूरत है, लेकिन आप देखें कि जो हमारा मुस्लिम कल्चर है उसके ये बहुत करीब है। बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए दूसरे की खुशी का सबब बनना, उससे चीज़ें बेहतर होती हैं। बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम के नाम पर बहुत सारी खराबियाँ भी हमारे अंदर, इतनी बेतकल्लुफ़ी और बेपर्दगी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन तरबियत करते वक्त ये हर वक्त जहन में चीज़ हो। और इसी तरह लड़के, जब आप अपने बेटों की तरबियत करें तो उनके अंदर वो सोच लाइए कि वो बेटा बने। बस लोग उस बेटे को एक और बेटी बना के पाल लेते हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो एक बेटा हो, हाँ वो तो इंतहाई मुश्किल फैसला होता है कि एक बेटे की माँ को कहा जाए कि आपको हम अपनी बेटी दे दें। वजह क्या कि हमने बच्चों के कंधों पे वो जिम्मेदारियां नहीं डाली होती।